दंडोत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने सब दुखों से छूटने के लिए और परम आनंद की अनुभूति के लिए उन्होंने हमें सुखमनी प्रदान किए। जो व्यक्ति साहिब श्री सुखमनी साहिब को इसकी कथा को श्रद्धा भक्ति से सुनता है और पाठ करता है, वह व्यक्ति सारी जिंदगी आनंदित होता है और मरकर परमपिता परमात्मा के धाम में जाता है। ऐसा समझो कि मोक्ष पाने के लिए सुखमनी से बड़ा और कुछ भी नहीं है। साहेब श्री सुखमनी साहेब में जीवन के सारे रहस्यों को बताया गया है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने को बहुत चतुर समझता है, सियाना समझता है, चालाक समझता है, बुद्धिमान समझता है, वह परमात्मा के निगाह में बहुत छोटा गिना जाता है। परमात्मा के मार्ग में जो सरल है, जो भोला है, जो अंदरह बिरह बाहरों निर्मल है, वही व्यक्ति परमात्मा के धाम में जाता है। चतुराइना चतुर्भुज भाई, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि तजह स्यानप सुरजन हो सिमरव हर हर राये एक आस हर मन रखो हो नानक दुख भरम भव जाए। जो व्यक्ति संसार की चलाकियों को छोड़कर, संसार के स्यानप को छोड़कर एक अकाल पुरुष का सिमरन करता है, और परमात्मा का सिमरन दो प्रकार से करते हैं लोग, एक तो कामना के लिए करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, और एक वो भक्त है जो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की मेहर को चाहता है। जो व्यक्ति परमात्मा का सुमरण कुछ मांग के लिए करता है कि पुत्र हो जाए, धन मिल जाए, संसार में मान मिल जाए, या कोई पद मिल जाए, कोई आश्रम मिल जाए, जो व्यक्ति कामना से परमात्मा का सुमरण करता है तो कामना की पूर्ति तो हो जाता है, लेकिन वाहेगुरु के प्रसाद से, वाहेगुरु की अनुकंपा से वो वंचित रह जाता है। ऐसा समझो कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाकर, सागर के पास जाकर के एक चम्मच जल ले आवे तो उसको लोग सियाना नहीं कहते। इसी प्रकार से वाहेगुरु परमपिता परमात्मा सच्चा पातशाह, जो व्यक्ति सुमरन करे तो सिर्फ उसके चरणों की कृपा, उसके चरणों में निवास ही मांगे। संसार के पदार्थ भाग्य से मिलते हैं, लेकिन परमात्मा का दर साधना और उसकी कृपा से मिलता है। चार पदार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म और मोक्ष साधना से प्राप्त होता है, और जो साधना करता है, जो सुमरन करता है, जो परमात्मा का ध्यान करता है, जो अपने चित्त वृत्ति को बाहर के विषयों से रोक करके अंतर ध्यान होता है, वह व्यक्ति परमात्मा के चरणों में वास पाता है। चार चीजों में धर्म और मोक्ष साधना और प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, अर्थ और काम ये प्रारब्ध से प्राप्त होता है। इसीलिए यदि पुरुषार्थ ही करना है, मेहनत ही करना है, तो धर्म और मोक्ष के लिए करना है, अर्थ और काम के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कृत तो करना है और कृत करके वंड भी छकना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी दीवाना नहीं हो जाना है कि जिस लिए भजन करना है वही सब खत्म ना हो जाए। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भव जाए। जो व्यक्ति एक अकाल पुरुष का आशा करता है, उसके जीवन से दुख, भय और संशय समाप्त हो जाता है। मनुष्य का संशय क्या है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, और मरने पर क्या होता है, परमात्मा है या नहीं है, हमारा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये सारे प्रश्न संशय से भरे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक निरंकार का सुमरण करता है, वाहेगुरु का ओट आसरा रखता है और गुरु वाला हो जाता है, वह व्यक्ति संशय से रहित होकर, भय से रहित होकर के और सारे दुखों से छूट करके वो परमात्मा को प्राप्त होकर सदैव आनंदित हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं, उस्तत मनमह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। जीवन में दो चीजें हैं, जीवन को चलाने के लिए धन चाहिए, तो उसके लिए गुरु महाराज कह रहे हैं व्यवहार ही करना है तो सत्य व्यवहार करो। बहु पर पंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा स्यों आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, अंत निवेरा तेरे जी पर लीजे। व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति बहुत सावधानी की जरूरत है। जब एन केन प्रकारेण, अर्थात जब इधर उधर करके जब बहुत माया आने लगता है तो व्यक्ति का मन उड़ा उड़ा रहता है, उसका पांव जो है सो धरती पर नहीं लगता, वो किसी आदमी को आदमी नहीं समझता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और परमात्मा को सब कुछ प्रिय है, अहंकार प्रिय नहीं। उस्तत मन में कर निरंकार। यदि तुम उस्तत ही करना है तो एक वाहिगुरु का उस्तत करना है, मनुष्य का उस्तत नहीं करना है। मनुष्य के उस्तत करने से आपको हानि होगा, मनुष्य के उस्तत करने से आपको टेम्पररी लाभ तो मिल सकता है लेकिन बाद में दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति निरंकार का उस्तत करता है, वाहिगुरु का उस्तत करता है, वह लोक में भी सुखी रहता है और परलोक में परमात्मा के हृदय में वास होता है। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। जीवन को पवित्र रखने के लिए सत्य व्यवहार करना है और निरंकार का उस्तत करना है। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। निर्मल रसना अमृत पियो, यह जो रसना निर्मल तभी है जब यह रसना हरि का सुमरण करता है। और हरि का सुमरण हमारे महापुरुषों ने चार तरीकों से बताया है। एक तो एकांत में बैठकर सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु का बोल बोल कर जाप कर रहा है। इसको बैखरी जाप कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा जाप है जिसको मध्यमा जाप कहते हैं। वो बोलना तो है लेकिन वो सुनाई किसी को ना पड़े, सिर्फ सुम को मन में ही जाप करना, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। होंठ हिले वो आवाज बाहर ना जाए, मन में जो है सो मन जो है मन सुमरण करे। रसना सुमरण करने पर उसको बैखरी जाप कहते हैं और मन के सुमरण करने पर उसको मध्यमा जाप कहते हैं। और एक तीसरी जाप है वो मेडिटेशन करने वाले लोग करते हैं, ध्यान करने वाले लोग, कि जब गहरी सांस लो तो ये भाव करो कि वाह अंदर प्रवेश कर रहा है। जब श्वास छोड़ो तो ये भाव करो कि श्वास नहीं है, वो गुरु ही बाहर है। अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में बहुत जानने का महत्व नहीं है, अभ्यास का ज्यादा महत्व है। इसी को कमाई कहते हैं। और इसके लिए ये है कि बंदे को ज्यादा खुशी करने का ना सोचो, एक निरंकार को खुश करने के लिए सारा प्रयत्न करो। क्योंकि बंदे के लिए प्राण भी दे दो तो वो भी खुश नहीं हो सकता। जब तक मतलब है तभी तक खुश होना है, बाद में कुछ नहीं। स्वार्थ लाख करह सब प्रीति। इस संसार में जो भी व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करता है वह स्वार्थ का प्रेम है। सच्चा प्रेम तो निरंकार से होता है। इसलिए वाहेगुरु साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि निर्मल रसना अमृत पियो। बैखरी मध्यमा पश्यन्ति और परा। जब तुम बैखरी जाप बहुत कर लोगे, फिर मानसिक जाप बहुत कर लोगे और फिर साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब ये है कि अपने को ये जानना है कि मैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से रहित इस देही में कोई जागत रहे, इस देही में जो सदैव जागने वाला आत्मा है वो प्रकाश स्वरूप है, सैभंग है। वह जो अंदर प्रकाश स्वरूप आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जानना ब्रह्म ज्ञान है। बैखरी मध्यमा पश्यन्ति और परा। जब तीन तरीके से बहुत जाप कर लोगे बहुत समय तक, तो एक ऐसी दशा आएगी कि जब आप आंख बंद करके बैठोगे तो आप ये महसूस करोगे, अंदर जानोगे कि कोई जाप कर रहा है और उस जाप को तुम देख रहे हो। उसको अनहद नाद भी कहते हैं, उसको अजपा जाप भी कहते हैं और उसको सूरत भी कहते हैं। ये चीज़ें गल्ला नाल नहीं आती, समझे ना, ये अभ्यास से आता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, और जो साधक है, जो भक्त है, जो ध्यान के मार्ग में आत्मा का बोध चाहता है, वो अधिक से अधिक एकांत रहे, अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ भी काम कर ले, मूंगफली ही बेच ले, कोई मजदूरी ही कर ले, शरीर की रक्षा के लिए कोई काम कर ले और अधिक से अधिक एकांत रहे और बहुत कम बोले और आँख को अधिक से अधिक बंद रखे और साधना में प्रवृत्त हो जाए। तब जाकर के जो अनहद नाद है वही अमृत है, वो अंदर से झरता है और वह अमृत उसी को अनुभव होता है जो अभ्यास करता है। अमृत क्या है? जब पांच ज्ञान इंद्रियों को, पांच कर्म इंद्रियों को, पांच प्राणों को, मन बुद्धि को नियंत्रित करके, कंट्रोल करके तुम उसको आत्मा की तरफ ले जाओगे तो एक प्रकाश का अनुभव होगा, एक अनहद नाद का अनुभव होगा और वह अनहद नाद आनंद को कहते हैं। और वही आनंद, वही अनहद नाद, वही अजपा जाप अमृत है, और कोई अमृत नहीं है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, निर्मल रसना अमृत पियो। जो व्यक्ति निर्मल रसना से वाहे गुरु का सुमरण करता है वह अमृत को पीता है। एक दूसरा अर्थ ये है कि एक अमृत तो मुंह से पिया जाता है और एक अमृत कान से पिया जाता है। ये सत्संग में जो सुखमनी की कथा सुन रहे हो ना, सबसे उत्तम हर की कथा, ये जो सुखमनी की कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा भक्ति से सुनना, ये भी अमृत पीना होता है। ये अमृत कान से पिया जाता है और जो व्यक्ति कान से अमृत पीता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति परमात्मा को पा करके मुक्त हो जाता है। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। जो व्यक्ति उस अमृत को पीता है, नाम रूपी अमृत को, ज्ञान रूपी अमृत को, वो सदा सुहेला अर्थात ऑलवेज आनंदित रहता है, हमेशा हैप्पी, हमेशा खुश, आए हरख न गए सो। उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता, वो दुखी होगा भी तो टेम्पररी एक दो मिनट के। इस जगत में चार तरह के लोग होते हैं, जैसे एक तो है कि पत्थर पर लकीर डाल दो, पत्थर पर लकीर डाल दो वो जल्दी मिटता नहीं है। दूसरा है कि आप किसी दलदल में लकीर पा दो, वो कुछ समय तक टिकता है। एक लकीर आप रेते में डाल दो तो वो लकीर भी कुछ समय टिकता है लेकिन हवा चलने पर वो बराबर हो जाता है। और एक चौथा लकीर है जो पानी में खींचो और एक पांचवा भी है जो हवा में लकीर खींचो। पत्थर में लकीर खींचने पर वो लकीर बना रहता है, कीचड़ में लकीर कुछ समय तक रहता है, रेते में बहुत थोड़ा समय रहता है, जल में बनते जाता है, समाप्त होते जाता है, और आकाश, आकाश में लकीर पाने पर वो लकीर बनता ही नहीं। जो व्यक्ति संसार के अज्ञान में जी रहा है, अविद्या में जीता है, वह व्यक्ति जब एक दूसरे से लड़ता है या एक दूसरे से वैमनस्य करता है, उसके हृदय में एक गांठ बन जाती है पत्थर के समान। उसने ऐसा बोला है, हम उसको बर्बाद करने के लिए हम सब कुछ लुटा देंगे। वो आदमी कैसा होता है? वो मक्खी के समान होता है। मक्खी दूध को बिगाड़ने के लिए अपना प्राण भी दे देता है, कहता है मेरा प्राण ज्ञान है, लेकिन दूध तो बर्बाद कर दिया। तो दुष्ट पुरुष जो होते हैं वो दूसरे को बर्बाद करने के लिए अपना जान भी खो देते हैं। ऐसे लोगों का चित्त पत्थर पर खींचे हुए लकीर जैसा होता है। दूसरा है जो चीकड़ पर कीचड़ में लकीर खींचता है, ये लकीर भी काफी समय तक रहता है हृदय में, लेकिन किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए तो वह कीचड़ का जो लकीर है समाप्त हो जाता है सत्संग करने। एक तीसरा है जो पानी में खींचा जाता है लकीर। पानी में खींचने पर लकीर जो है एक तरफ से खींची जाओ और दूसरा तरफ वो समाप्त हो जाता है। सत्संगी पुरुष ऐसे ही होते हैं। सत्संगी पुरुष को भी लोग सताते हैं लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक क्षण के लिए उसको लगता है, फिर अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, गुरुमत से गुरु का मत लेकर के अपने को समझा करके अपने हृदय को साफ कर लेता है। और एक ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं जिसके अंदर जगत का कोई भी असर नहीं होता, उस पर लकीर ही नहीं पड़ता है। इसलिए साध संगत जी, हमें जो महापुरुष लोग हुए हैं उनका आदर्श, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना है। एक छोटे बच्चों की तरह इस संसार में जीना है निर्मल भाव से, तब जाकर के जीवन सदा सुहेला, यह जीवन आनंदपूर्ण होगा। नैनह पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसह सब संग। नैनह पेख ठाकुर का रंग, एक तो ये नयन है, नयन नाम आंख का है। नैनह पेख ठाकुर का रंग, इसका एक अर्थ तो ये है कि इन आंखों से ठाकुर का ये जो संसार है इसको देखो। दूसरा जो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि नैनह पेख ठाकुर का रंग, ये जो आंख है इससे संसार दिखता है, और एक और आंख है जिसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसको तीसरा आंख भी कहते हैं, जो ध्यान के क्लास में हम लोग बताते हैं कि यहाँ पर सात चक्रों में यहाँ एक आज्ञा चक्र होता है, और जब कोई व्यक्ति यहाँ उसको ध्यान करता है तो वहां पर एक अंदर प्रकाश का अनुभव होता है। बहुतों को हुआ है ध्यान की क्लास में। ये तो जो अभ्यास करेगा उसको होगा। गुरु महाराज ने साफ कहे हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो खोजे सो पावे, सारे नहीं पावे। ऐसा नहीं है कि हम सफेद कपड़े पा लिए हैं, माला पा लिया, बहुत जगत में संत कहला रहे हैं, लेकिन अभ्यास ना करें उसका दो कौड़ी कीमत नहीं इस कपड़े का। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय। पीपा जी कहते हैं, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, पीपा प्रणवय परम तत्व है, हर एक व्यक्ति के अंदर सुप्रीम बीइंग है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। एवरीवन हैज द पॉसिबिलिटी टू बिकम गॉड, और हर एक व्यक्ति रियलाइज कर सकता है उस परम तत्व को, बशर्ते कि किसी संत महापुरुष के चरणों में अपने को छोड़ दे और जैसा वो कहें वैसी उनके चरणों में अपने को छोड़कर साधना करे। क्योंकि कमाई से आदमी अमीर होता है, गल्ला नाल अमीर नहीं होता। साहेब श्री गुरु महाराज कहते हैं, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, नैनह पेख ठाकुर का रंग, एक तो रंग बाहर का है जो इन आँखों से दिखता है और एक प्रभु का जलवा अंदर है, महाप्रकाश अंदर है, वो दिव्य नैनों से, दिव्य चक्षु से, तीसरी आँखों से देखा जाता है। और जब तुमको तीसरी आँख प्राप्त हो जाएगा गुरु की कृपा से, साधना के द्वारा, तो तुम जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे। वह व्यक्ति एक फूल की तरह जो हमेशा सुगंध देता है लोगों को, तुम्हारे से फिर भला ही होगा, तुम्हारे से परोपकार ही होगा। वो व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वो हरेक का भला करेगा, उस व्यक्ति को कोई स्वार्थ नहीं होता। नैनह पेख ठाकुर का रंग, इसलिए सत्संग जी यदि देखना ही है तो दिव्य दृष्टि से ठाकुर के रंग को, ठाकुर के प्रकाश को, ठाकुर के आनंद को अंदर देखो। आप नड़े गिरवान में सिर नेवा करते, वह जो महबूब है, वह जो परमात्मा है, वह अंदर ही दीदार होता है। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाही जहाँ चाही गर्दन झुकाई देख ली। निवैसो गौरा हो, जब व्यक्ति सदगुरु के पास निवा होता है तो गुरु उसको ज्ञान रूपी अमृत देते हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं आगे, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटह पाप जपिए हर बिंद। ये जो चरण है, पांव, पांव को यदि सफल करना चाहते हो तो एक ही जगह जाना है और वो है नानकसर गुरुद्वारा। यदि इस पांव को सफल करना चाहते हो, चरण चलो मार्ग गोविंद, क्योंकि इस नानकसर गुरुद्वारे में एकमात्र गोविंद की चर्चा है। यहाँ पर आदरणीय जितने भी विहंगम संत हैं वो 2 बजे से उठ करके कीर्तन करते हैं, प्रभु का गुणगान गाते हैं। उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा को सौंप दिए हैं और इनके द्वारा जो आप सुनोगे कीर्तन, ये आप जपते हैं, अवरह नाम जपाते हैं, इनके दर्शन से भी आपको पुण्य होगा। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि चरण चलो मार्ग गोविंद, इस चरण को सफल करने के लिए नानक सर गुरुद्वारे में आकर के गोविंद का दर्शन करो, मिटह पाप जपिए हर बिंद। और यहाँ आके करना क्या है कि हरि को बिंद, बिंद नाम जानना, बिंद का मतलब बोध होता है, उस हरि को अपने अंदर ही बोध करना है, अनुभव करना है, मिटा है पाप। जिसके कारण क्या होगा, जब आप हरि का जाप करोगे तो अंदर अनुभव हो जाएगा और उस अनुभव से मिटा है पाप, जितने भी पाप हैं वो सारे मिट जाएंगे, जन्म जन्मांतरों के पाप जो है वो जल जाएंगे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। कर हर कर्म, ये हाथ, कर नाम हाथ का है, हाथ से जो है सो कृत करना है, और कृत जो है ये कड़ा का भी यही महत्व है कि ऐसा कर्म करना है जिससे अपने शरीर की रक्षा के लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था करना है और इस हाथ से हमारे बहन माँ के ऊपर यदि कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए ये हाथ को आगे बढ़ाना है। इस हाथ से किसी का बुरा नहीं करना है, ये कड़ा हमें रोकता है, कड़ा हमको बैलेंस में रखता है। कर हर कर्म श्रवण हर कथा। हाथ से शुभ कर्म करना है और श्रवण जो है कान से हरि की कथा को सुनना है, क्योंकि सबसे उत्तम हर की कथा। कथा सुनने से अज्ञान मिटता है। याद रखना, निष्काम कर्म से अर्थात सेवा से मन शुद्ध होता है और भजन कीर्तन से मन ठहराव में आता है, और जो ब्रह्म ज्ञान है वो मात्र हरि की कथा से आता है। तीन चीज जो है हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में, मन में तीन प्रकार के दोष होते हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल कहते हैं पाप को, विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को, आवरण कहते हैं पर्दा। तो जो मल की निवृत्ति सेवा से होता है, विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह वैसन पाइए कोह नानक बाह लुटाइए, वह व्यक्ति निश्चिंत होकर दरगाह में जाता है। और कीर्तन से या सुमरण से मन के अंदर जो विषयों की भावना है, जो मन कभी मनुआ ऊभ चढ़त है कभू जाए प्याले, लोभी मनुआ थिर न रहत है चारे कुंटा भाले, जो मन डोल रहा है वो डोलते हुए मन को सुमरण जो है, भजन जो है, कीर्तन जो है, वो मन को टिकाव में लाता है। और हमारे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है, अंधकार है, वह तो गुरु के ज्ञान से, हरि की कथा से ही वो महाप्रकाश होता है। बगैर हरि कथा के बगैर आज तक ना तो ब्रह्म ज्ञान को पाया है ना आगे पा सकता है। इसीलिए जिससे हरि कथा सुनो उसके प्रति भी बहुत श्रद्धा भक्ति हो, इसलिए ताकि उस कथा का तुम कीमत समझ सको। तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं। एक कैंची होता है, समझे ना, कैंची का काम है काटना ही। एक सुई होता है, सुई होता तो छोटा है लेकिन काटे हुए को सीता है, जोड़ने का काम करता है। हमें सुई बनना है, नीमा होना है, जोड़ने का काम करना है गुरु घर से। कैंची बन करके जीवन को बर्बाद नहीं करना है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। जो व्यक्ति सेवा करके मन को शुद्ध कर लेता है और हरि की कथा को सुन करके ब्रह्म ज्ञान को पा लेता है, वह व्यक्ति हर दरगह परमात्मा के दरगाह में उजल मथा अर्थात अंदर उसका आलोक हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, वह भय से रहित हो जाता है। भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कह नानक सुंदरी मना ज्ञानी ताहे बखान, वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं सारे भोग उसको आप ही आप आ जाता है। एक सिख ने धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज से प्रश्न किया कि आप गुरु महाराज को भोग लगाते हो और कहते हैं कि साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हाजर नाजर हैं, तो वो वास्तविक में वो भोजन छकते हैं? मैं बाबा जी, मैं बहुत बेंती पूर्वक, बहुत जोदड़ी करके आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार हमें भी इस दास को दर्शन करा दें कि धन बाबा गुरु नानक देव जी महाराज वो भोजन छकते हैं, वो मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। ब्रह्मज्ञानी बाबा नंद सिंह जी महाराज जो कि हरे की इच्छाओं को पूरा करते थे, वो चलते फिरते तीर्थ थे, उन्हीं की कृपा से आज हजारों गुरुद्वारे दुनिया में हैं, हजारों लोग उनके मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल किए हैं। एक समय बाबा नंद सिंह जी महाराज भोग लगाने के लिए भोजन को लाए और पर्दा कर दिए, पर्दा कर तो दिए लेकिन थोड़ा सा पर्दा जो है सो खाली रखे थे। बाबा नंद सिंह जी महाराज बहुत भाव से प्रार्थना करके सच्चे पातशाह आए, आप भोग लगाएं, क्योंकि वो इतने भाव से साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज को साक्षात हाजर नजर मानते थे। ऐसा भी लोग कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता था तो बाबा नंद सिंह जी महाराज गुरु महाराज को अपने मस्तक पर लेकर के बाग में घुमाते थे कि इनको गर्मी लगता है हवा से। जो आज तो व्यक्ति नास्तिक हो गया है, आज गुरु ग्रंथ साहिब के बहाने बहुत कुछ पाप कर बैठते हैं, लेकिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सगुण परमात्मा है। सगुण परमात्मा जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, और जितनी सेवा मर्यादा सहित इस नानक सर गुरुद्वारे में होता है इस दास ने और कहीं नहीं देखा है। और जगह तो ग्रंथ मानते हैं, यहां तो साक्षात परमात्मा मानते हैं, हाजर नाजर मानते हैं। और यही कारण है कि यहां पर जो भी संगी आते हैं उनका बुद्धि भी निर्मल होता है, उनका जीवन बहुत ऊंचा होता है, महान होते हैं। ऐसा कहते हैं कि साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए और प्रसादा छकने लगे, बाबा नंद सिंह जी महाराज उनसे कुछ उनके उपदेश को भी साथ साथ सुन रहे हैं। वह सिख थोड़ा सा जगह था पर्दा, उस पर्दे से देखा कि एक दिव्य प्रकाश कोई है जो वहां पर बैठ करके भोजन को छक रहे हैं। नानक नदरी नदर निहाल, वह व्यक्ति वह दीदार करके वो भी निहाल हो गया। साध संगत जी, जो व्यक्ति भावना से भावना विहीन नर पावे कैसे जगदीश को, जिसके मन में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति जगदीश परमात्मा को कैसे पा सकता है। हृदय में भाव हो तो परमात्मा जहाँ हो वहीं प्रकट होते हैं। एक समय की बात है, बाबा नंद सिंह जी महाराज सिर्फ मनुष्यों को नहीं तारे, पशु पंछियों को भी तारे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस परम दशा को प्राप्त कर लेता है ना, तो उनके उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से सबका कल्याण होता है। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज एक बार किसी कमरे में बैठे थे, अचानक खिड़की से एक बंदर आ गया, जो वहां पर उनके संगी थे उसको पकड़ करके बाहर करने के लिए कोशिश किए, सारे डर गए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते हैं कोई डरने की आवश्यकता नहीं, इसने पूर्व जन्म में हमारी बहुत सेवा की है, और कुछ ऐसे कर्म हो गया था जिसका इसको बंदर की जूनी मिली है, अब यह उत्तम जूनी को प्राप्त करेगा। वो बंदर आकर के बाबा जी के चरणों में लौटने लग पड़ा, उनके पांव को प्रेम करने लगा। बाबा जी ने अपने चरण को स्पर्श किए और उसका कल्याण हो गया, वो वैकुंठ हो गया। जिस गति को मुनि लोग, संत लोग चाहते हैं, उस दशा को वह सहज में प्राप्त कर लिया। और कहते हैं कि धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जिस प्रकार से मनुष्य को संस्कार करते हैं वैसे उसका संस्कार हुआ। तो इस संसार में जो परोपकार जो है ना, एकमात्र ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है, दूसरा कहाँ करेगा। वो एक देगा तो दस उससे लेने का सोचेगा किसी न किसी रूप से। इसलिए साधना के द्वारा पहले सेवा सिमरन और फिर किसी संत महापुरुष से श्रद्धा भक्ति से ब्रह्म ज्ञान को सुनो। एक समय की बात है, एक सीआईडी अफसर जो है बाबा नंद सिंह जी के पास आया और ऐसे दीवान लगा रहता था, वो आकर के संत के भेष में आके बैठ जाता था, देखता था कि लोग यहाँ क्या करते हैं। क्योंकि संसारी लोगों का मन ऐसा ही होता है ना, संतों के पास भी जाके परीक्षा लेते हैं, ये माताएं आई हैं, बहनें आई, क्या बातें करता है, क्या चर्चा हो रहा है। मतलब जो आदमी की नीच बुद्धि होती है ना, वो अपने ढंग से ही महापुरुषों को सोचते हैं। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज अपने संगियों को बोले कि भाई उस साधु को मेरे पास बुला लो। वो साधु आया, हाँ भाई बताओ क्या बात है, कितने समय से तुम यहाँ पर आ रहे? महाराज आपके दर्शन के लिए महीना हो गया, तुमको कुछ मिला, कोई कमी यहाँ देखा तुमने, कुछ नजर आया तुम्हारे मतलब की चीज? जब बाबा नंद सिंह जी महाराज ये बात बोले, वो कांप गया। और कुछ सीआईडी करना है तुमने तो कर लो, तसल्ली कर लो यहां पर। जब बाबा जी ये बोले, वो चरणों में गिर पड़ा। बाबा जी तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, वो तो साक्षात परमात्म स्वरूप हो चुके थे। इस तरह से बाबा जी ने बहुतों को उतारे हैं। मैं बताया ना, मनुष्य को तो छोड़ो, एक समय की बात है, एक मुसलमान खेत जोत रहा था, समझे, तो वो जी अपना गहने वगैरह बेच करके बहुत कीमती बैल खरीद के लाया और उसको सुबह भोजन भी काफी खिलाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। खेत में ले जाता, वो एक जगह अड़ा खड़ा रहता है, उसको किसान मारता है, सब कुछ कर, लेकिन वो उधर से बाबा जी जा रहे थे और बाबा जी को उस मुसलमान ने जो है, सैयद ने विनती किया, सच्चा पातशाह, हमने अपने कपड़ों को बेचकर, गहनों को बेच करके एक बलद लाया हूँ और ये कुछ करता नहीं है, तो क्या हाल होगा, जो मैं तो बिक जाऊँगा। वहाँ पर कहते हैं धन बाबा नंद सिंह जी महाराज उस बैल को समझाए कि भाई जिसका तुम खाते हो उसका कृत करो, पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने क्या किया है, चार पांव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा परी हैं तब कत मूड लुके हैं, हर बिन बैल बिगाने होई हैं, हर बिन बैल बिगाने। जब बैल जो है ना, कोई आदमी मांग के ले जाए बैल को, तो खिलाता थोड़ा है, मारता ज्यादा है, काम ज्यादा लेता है। इसलिए जो व्यक्ति इस अमोलक शरीर को पा करके हरि का सुमरण नहीं करता, उसका वो बेगाने बैल वाला हाल होता है। यहाँ पर धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज उसको कान में कहते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में भजन सुमरण नहीं किया, जिसके कारण तुम्हें बलद का जुनी मिला है, और जब इस जन्म में यदि कृत नहीं करोगे तो अगला जो है बहुत नीच जूनी मिलना है तुम्हें, इसलिए सावधान हो जा। कहते हैं कि उसी वेले बलद चलने लग पड़ा, वो किसान जो है खुश हो गया, बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जो है ना, वो समर्थ होते हैं। उन्हीं का जो बीज बोया हुआ है, जिसकी छाया में हम लोग कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, ये धन धन भवन नंद सिंह जी की लगाया हुआ बूटा है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे उपदेश कर रहे हैं, कर हर कर्म, हाथ से शुभ कर्म करो, श्रवण हर कथा, और इस कथा, इस कान से प्रभु की कथा को सुनो, और कथा बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनो, जीवन को बदलने के लिए सुनना है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से क्रॉस कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं। ये जो है, जब सुनो इस कान से, उसको अंदर ले जाओ और जीवन को बदलने के लिए सुनना है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति से इस सुखमणि साहेब की कथा को सुनोगे, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तुमको दर्शन देंगे। और सत्संग जी, एक विनती है कि सोमवार से ध्यान का क्लास शुरू हो रहा है, जिन लोगों को एड्रेस चाहिए आज और कल ले लेना है, और बाद में ऐसा नहीं कि मुझको चांस नहीं मिला, मुझे चांस नहीं मिला, ये सब जो है ख्याल रख। यहाँ पर परमात्मा का ध्यान, मुंह से प्रभु का सुमरन, कान से हरि की कथा, जब आपका ऐसा मन से प्रभु का ध्यान करना है, कान से प्रभु की कथा सुननी है, हाथ से शुभ कर्म करना है और रसना से उसका नाम लेना है, फिर मोक्ष तो तुम्हारा दास हो जाएगा। मोक्ष कहेगा मुझे जो है स्वीकार कर लो, करो, मोक्ष चाहने की जरूरत नहीं होगी तुम। इसीलिए साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा। जब ऐसा आपका जीवन हो जाएगा कि हाथ से कर्म करोगे, कान से कथा सुनोगे, तब जाकर के आपका लोक सुखिए, परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। वाहे गुरु जी की।